ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी 6 दलों ने ही समानुपातिक उम्मीदवारों के नाम आयोग में किए पेश। समानुपातिक उम्मीदवारों का निराकरण कर इसी हफ्ते में राष्ट्रपति समक्ष रिपोर्ट पेश करने की है आयोग की तैयारी। हरित जलवायु कोष से प्राप्त होने वाली 2,42,00,000 डॉलर की सहायता स्वीकार करने का सरकार का निर्णय। हमला जिला मुख्यालय सिमकोट बाजार और आसपास के क्षेत्र में 2 हफ्ते से पेयजल का है अभाव और ईरान के साथ तत्काल कोई समझौता संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधिसभा चुनाव में 3% मत प्राप्त करने वाले सभी 6 राजनीतिक दलों ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों के नाम आज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं। निर्वाचन में थ्रेशहोल्ड पार करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पेश किए हैं। ये जानकारी आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने दी। आयोग ने बताया कि दलों द्वारा प्रस्तुत सूची प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद समानुपातिक प्रणाली के तहत निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। आयोग ने यह भी जानकारी दी कि चैत महीने के पहले सप्ताह के भीतर निर्वाचन का अंतिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की आज हुई केंद्रीय सचिवालय बैठक ने समानुपातिक सांसदों के लिए 57 लोगों के नाम तय किए हैं। बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि 17 खस आर्य, 16 जनजाति, 3 मुस्लिम, 8 दलित, 9 मधेशी और 4 थारू क्लस्टर से नाम तय किए गए हैं। इसी तरह नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में हुई बैठक ने समानुपातिक प्रणाली के तहत 20 लोगों के नाम तय किए हैं। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता देवराज चालीसे ने दी। वहीं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की आज की बैठक ने भरत गिरी खस आर्य पुरुष मोहतरी, ताहिर अली मुस्लिम पुरुष रूपनदेही, खुशबू ओली खस आर्य महिला झापा और सरस्वती लामा जनजाति महिला धादिंग के नाम तय किए गए हैं। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठ ने दी। इसी प्रकार श्रम संस्कृति पार्टी ने समानुपातिक प्रणाली के तहत क्लस्टर के अनुसार मधेशी महिला रूबी कुमारी ठाकुर, दलित महिला राधिका रामतेल, खस आर्य महिला अंबिका देवी संग्रौला खड़का और आदिवासी जनजाति से पूर्ण बहादुर लिंबू के नाम दिए हैं। ये जानकारी पार्टी के उपाध्यक्ष लोकनाथ चुड़ाल ने दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि हालिया प्रतिनिधिसभा चुनाव के परिणामों से पुराने दलों को नहीं घबराना चाहिए। आज पत्रकार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री कार्की ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि संपन्न चुनाव में नए दल ने लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिए हैं, उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि रासोपा को जनता के दिए मतों का सम्मान करना होगा और साथ ही ये भी ख्याल रखना होगा कि अल्पमत की उपेक्षा न हो। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नेपाल की जनता परिपक्व नेताओं को कभी नहीं भूलती। साथ ही ये भी कहा कि आज एक लहर आई है और कल दूसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री कार्की ने चुनाव को सफल बनाने में सहयोग देने वालों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन भी किया। सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम को कम करने और जीविकोपार्जन के लिए हरित जलवायु कोष से प्राप्त होने वाली 2,42,00,000 से अधिक अमेरिकी डॉलर बराबर की सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल में हिमताल विस्फोट और जलवायु परिवर्तन जनित बाढ़ से उत्पन्न जोखिम को कम करने, जीविकोपार्जन और संपत्ति के संरक्षण से संबंधित परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से हरित जलवायु कोष से प्राप्त होने वाली 2,42,67,427 अमेरिकी डॉलर की सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री ओम प्रकाश अयाल ने दी। इसी तरह बैठक ने युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई देशों में मौजूद तथा ट्रांजिट में फंसे नेपाली नागरिकों को तत्काल राहत और उद्धार कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पहल शुरू करने का भी निर्णय किया है। गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि नेपाली दूतावास रियाद सिटी, अबुधाबी, दोहा, कुवैत, मस्कट, इस्लामाबाद, काहिरा और तेल अबीब स्थित दूतावास और महावाणिज्य दूतावासों को राहत और उद्धार के लिए पहल करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा बैठक ने जेएनजी प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन करने का निर्णय किया है। साथ ही गुलमी के ओम प्रकाश अरियाल को राष्ट्रीय सभा के रिक्त सदस्य पद पर मनोनयन के लिए सिफारिश करने का भी निर्णय किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। हुमला जिला मुख्यालय सिमकोट बाजार और आसपास के क्षेत्र में दो हफ्तों से पीने के पानी का अभाव चल रहा है। इस साल हिमपात न होने से पेयजल के मुहाने सूखने लगे हैं, इसलिए पानी का अभाव हुआ है। सिमकोट तल्लो गांव के बाशिंदे करीब 3 घंटे पैदल चलकर पिनारा मुहाने से पानी लाने को मजबूर हैं। ये बात यहां के स्थानीय लोगों ने बताई। उनके मुताबिक पहले करीब 10 फीट तक बर्फबारी होती थी तो पानी का अभाव नहीं होता था, लेकिन इस बार हिमपात न होने के कारण जिले के अधिकांश मुहाने सूख गए हैं, इसलिए समस्या हो रही है। जंगली आग नियंत्रण पर प्रभावकारिता, तीनों तहों की सरकारों और समुदाय की सहभागिता के नारे के साथ आज से जंगली आग व्यवस्थापन सप्ताह शुरू हुआ है। वन क्षेत्र में लगने वाली आग के न्यूनीकरण और उस पर नियंत्रण के लिए जनचेतना बढ़ाने के उद्देश्य से वन तथा वातावरण मंत्रालय हर साल चैत एक गते से जंगली आग व्यवस्थापन सप्ताह मनाता है। मंत्रालय के मुताबिक सप्ताह के दौरान जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, समुदाय एवं विद्यालय स्तरीय अभिमुखीकरण, प्रचार प्रसार अभियान, स्थानीय संचार माध्यमों से सूचना प्रवाह, जोखिम वाले क्षेत्रों का अनुगमन, वन क्षेत्र में अग्निरेखा निर्माण, साफ सफाई जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने राजस्व अनुसंधान विभाग के तत्कालीन महानिदेशक झलक राम अधिकारी के खिलाफ 70 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तत्कालीन महानिदेशक अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने एचके इंटरप्राइजेज प्राली के राजस्व चोरी से संबंधित जांच एवं अन्य आरोपों से बचाने में सहजीकरण करने के बदले कंपनी के संचालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ से 70 लाख रुपये की रिश्वत ली। इसी आरोप में आज काठमांडू स्थित विशेष अदालत में मामला दायर किया गया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। आयोग ने अधिकारी के साथ साथ रिश्वत के लेन देन और संपत्ति छिपाने में सहयोग करने वाले देवेंद्र केसी और रविन्द्र लामिछाने को भी प्रतिवादी बनाकर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दायर किया है। गुलमी के रुद्रवेणी वामी टकसा सड़क स्तरोन्नति के लिए सड़क को पूरे चैत महीने बंद किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आने वाले इस सड़क खंड के सत्यवती गांवपालिका स्थित सिसने भीर में सड़क उन्नयन कार्य शुरू होने के कारण चैत एक गते से 30 गते तक सड़क पूरी तरह बंद रहेगी। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय ने दी। सड़क डिवीजन कार्यालय पालपा के पत्र के अनुसार इस राजमार्ग के अत्यंत संवेदनशील और संकरे स्थान सिसने भीर में सड़क कटिंग के दौरान पत्थर गिरने का जोखिम बढ़ सकता है और दुर्घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सड़क बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये बात सहायक प्रमुख जिला अधिकारी हरिप्रसाद गैरे ने बताई। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्की पूर्व प्रधानमंत्री ओली के गुंडू स्थित निवास पर पहुंचकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। अध्यक्ष ओली के पिता मोहन प्रसाद ओली का 97 वर्ष की आयु में पिछले शुक्रवार को निधन हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले का आज 16वां दिन है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव 16वें दिन अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वर्तमान शर्तों पर ईरान के साथ किसी भी समझौते के पक्ष में वे नहीं हैं। वहीं ईरानी सेना भी पीछे हटने की बजाय खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर हमलों की सीधी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। हालांकि अब ईरान ने भारत को एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी। शुक्रवार को भारत में ही ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने संकेत दिया है कि भारत को दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा कि महत्वपूर्ण जलमार्ग केवल तेहरान के दुश्मनों के लिए बंद है और उनकी सेना ने चेतावनी दी है कि ईरानी तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण एक द्वीप पर अमेरिकी हमलों के बाद वह संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों को निशाना बना सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश हॉर्मुज चल डमरू मध्य में जहाजरानी मार्गों को खोलने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। हालांकि इसमें भागीदारी के लिए इनमें से किसी भी देश ने स्पष्ट रूप से हामी नहीं भरी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी 6 दलों ने ही समानुपातिक उम्मीदवारों के नाम आयोग में किए पेश। समानुपातिक उम्मीदवारों का निराकरण कर इसी हफ्ते में राष्ट्रपति समक्ष रिपोर्ट पेश करने की है आयोग की तैयारी। हरित जलवायु कोष से प्राप्त होने वाली 2,42,00,000 डॉलर की सहायता स्वीकार करने का सरकार का निर्णय। हुमला जिला मुख्यालय सिमकोट बाजार और आसपास के क्षेत्र में 2 हफ्ते से पेयजल का है अभाव। और ईरान के साथ तत्काल कोई समझौता संभव नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।